आज है 11 जून दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर चिंता जताई। ईरान ने कहा तनाव ऐसे कम नहीं होगा। लंदन की अदालत ने भारतीय कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई।
वो उनका बेल हियरिंग 3 times वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट किया गया, तो इसके बाद उनका अगला ऑप्शन ये था हाई कोर्ट जाने का, और इसीलिए आज वो हाई कोर्ट जा रहे हैं।
क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा। आज बांग्लादेश और श्रीलंका होंगे आमने सामने। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ा रहा है। एजेंसी के प्रमुख यूके अमानो ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि ईरान का उत्पादन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते में तय की गई सीमा तक कब पहुंचेगा। ईरान ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो अमरीकी प्रतिबंधों के बाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने जा रहा है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाली एक संसदीय समिति ने कहा है कि वह मुलर रिपोर्ट पर न्याय विभाग के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है। मुलर ने अपनी रिपोर्ट में पिछले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की जांच की थी। समझौते के तहत न्याय विभाग मुलर की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए कुछ सबूतों की समीक्षा करेगा। संसदीय समिति अटॉर्नी जनरल से मुलर रिपोर्ट पर अधिक जानकारी की मांग कर रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा मिशन ने माली में और अधिक हवाई सैन्य सहायता भेजने का फैसला किया है। माली में एक गांव में 100 से अधिक लोगों की हत्या के बाद ये कदम उठाया गया है। ये नरसंहार मध्य मोपती क्षेत्र में हुआ। लगभग 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में हुए नरसंहार के लिए फुलानी समुदाय को जिम्मेदार बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता इरी कैनिको ने इस मामले में और अधिक जानकारी देते हुए बताया।
The UN mission in Mali today said that a deadly attack took place yesterday evening in the
Mali स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बताया है कि ये घातक हमला कल शाम शोबानों को गांव में हुआ। शुरुआती खबरों के मुताबिक हथियारबंद लोगों के एक समूह ने हमला किया और कम से कम 95 लोगों की हत्या कर दी। बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन माली के अधिकारियों के साथ पीड़ितों की मदद करने में जुटा है। ये थे संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता इरी कैनिको के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक तिबोर नागी कल सूडान जाएंगे। अमेरिका सत्तारूढ़ मिलिट्री काउंसिल और लोकतंत्र समर्थक विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिश में है। पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद ये बातचीत टूट गई थी। नागी बाद में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद से भी मुलाकात करेंगे। इथियोपिया सूडान संकट में मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा है। मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सिलो इब्रार्ड ने कहा है कि उनका देश जुलाई के मध्य तक अमेरिका जाने वाले आप्रवासियों की संख्या में कमी करेगा। अमेरिका ने लंबी द्विपक्षीय बातचीत के बाद मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अगर मेक्सिको ने वादे के तहत अवैध आप्रवासियों को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो अमेरिका फिर से टैरिफ लगा सकता है। पोम्पियो ने कहा, आपने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने इस मसले पर पर्याप्त प्रगति नहीं की तो टैरिफ को फिर से लगाया जा सकता है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने कोसोवो और सर्बिया के बीच बढ़ते राजनीतिक संघर्ष पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिनिधि ने दोनों देशों से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा न हुआ तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इंग्लैंड में खेले जा रहे विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, अपने मोबाइल फोन पर भी इस समय लाइव संदीप सोनी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने इस बात पर चिंता जताई है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम का पहले से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। ईरान ने इसे अमेरिका की आर्थिक जंग का नतीजा बताया है। इस पर इसराइल ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा कहा है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ा रहा है। ईरान ने पिछले महीने घोषणा की थी कि अमरीकी प्रतिबंधों के जवाब में वो कुछ ऐसा ही करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख युकिया अमानो ने ईरान के इस रुख पर चिंता जताई है और तनाव दूर करने के लिए संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने बाद में कहा कि तनाव तभी दूर हो सकता है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग रोक दे। उन्होंने इसे आर्थिक युद्ध बताया है। कोई ये न उम्मीद करे कि ईरान के साधारण लोगों को आर्थिक युद्ध में झोंका जाएगा और वो बच जाएंगे, जिन्होंने इस जंग का समर्थन किया है या इस युद्ध को शुरू किया है। ये थे ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ के शब्द। जावेद जरीफ के इस बयान पर इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान सारी दुनिया के लिए खतरा है। जरीफ एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं। ईरान वो देश है जो इसराइल को मिटा देने की हर दिन धमकी देता है। ईरान सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इसराइल ईरान को ऐसा नहीं करने देगा जिससे हमारे अस्तित्व पर और सारी दुनिया को खतरा हो। ये थे इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। संवर्धित यूरेनियम परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन का काम करता है, लेकिन इससे परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इस ईंधन को जब हैवी वाटर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है तो प्लूटोनियम बनता है जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। अमेरिका और पश्चिम के कई देश इस बात पर अपनी चिंता जताते रहे हैं, लेकिन ईरान ये दोहराता रहा है कि वो कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर चिंता जताई। रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में भारत के वांछित अभियुक्त नीरव मोदी इस समय लंदन में सलाखों के पीछे हैं। जमानत पर रिहा होने की नाकाम कोशिशों के बाद नीरव मोदी आज एक बार फिर जमानत के लिए कोशिश करेंगे। लंदन की अदालत में नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने लंदन में मौजूद BBC संवाददाता गगन सवरवाल से बात की।
वो उनका बेल हियरिंग 3 times वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट किया गया, तो इसके बाद उनका अगला ऑप्शन ये था हाई कोर्ट जाने का, और इसीलिए आज वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको चौथी बार बेल उनका एक्सेप्ट हो जाए, ना कि रिजेक्ट हो जाए। नीरव मोदी बहुत परेशान है वांड्सवर्थ प्रिजन में। जब से उनको अरेस्ट किया गया तब से उनको वांड्सवर्थ प्रिजन में रखा है, तो वो बहुत फेड अप हो गए क्योंकि वो लंदन का सबसे क्राउडेस्ट प्रिजन माना जाता है, और नीरव मोदी को बहुत ही दिक्कत हो रही है प्रिजन में, तो इसलिए वो बेल की उम्मीद रख रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको बेल जल्दी से जल्दी मिले, तो इसीलिए आज वो हाईकोर्ट फिर से चौथी बार अपने बेल को जज के सामने प्रस्तुत करेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उनके लॉयर्स ने उनका बेल सिक्योरिटी अमाउंट 1 million से 2 million पाउंड्स तक इंक्रीज किया, लेकिन तब भी जज ने उनका बेल रिजेक्ट करते हुए बोला कि उनका जो फ्रॉड का जो अमाउंट है वो इतना मैसिव है कि वो कंफर्टेबल नहीं है उनको बेल देने के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि उनको हमेशा से लगता है कि नीरव मोदी एक हाई फ्लाइट रिस्क किस्म के इंसान है, उसका ये मतलब है कि अगर उनको बेल मिलता है तो जज को ऐसा लगता है कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने इन स्पाइट ऑफ ऑफरिंग 2 million pounds उन्होंने उनका बेल रिजेक्ट किया। आज इंटरेस्टिंग बात ये होगी, हम देखेंगे कि क्या नीरव के लॉयर्स सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे तो कितना होगा।
जी गगन, और भारत सरकार उन्हें भारत लाने के प्रयास भी कर रही है और उनके प्रत्यर्पण से जुड़ा मामला भी चल रहा है, उस पर क्या अपडेट है, कब इस पर सुनवाई होगी और क्या उनके प्रत्यर्पित होने की कोई संभावना है?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जो आज जो होने वाला है वो बहुत ही अलग केस है, ये उनका बेल हियरिंग केस है, लेकिन उनका जो एक्सट्रेडिशन केस है वो तो साइड बाय साइड वो भी चलता जाएगा। अभी 27 जून को नीरव मोदी को वीडियो लिंक के द्वारा एक्सट्रेडिशन मामले में जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट कोर्ट अपीयरेंस होगा। ये जो रूटीन होता है ना हर क्रिमिनल, हर प्रिजनर के साथ यूके देश के जजेस करते, वो हर 3-4 हफ्तों में उनसे मिलते हैं वाया वीडियो लिंक टू मेक श्योर कि यू नो ही इज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उनके एक्सट्रेडिशन केस की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी और ये सेकेंड केस मैनेजमेंट हियरिंग होगा एक्सट्रेडिशन केस में, और यहाँ पे हमें पता चलेगा, क्योंकि जज ने लास्ट हियरिंग में मांगा था कि इंडियन अथॉरिटीज नीरव मोदी को कौन से प्रिजन में रखने वाले हैं जब उनका एक्सट्रेडिशन होगा। तो ये 29 जुलाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस होगा। उसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि हियरिंग का डेट कब होगा नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन केस को लेके। तो दोनों अलग केसेस है, दोनों साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलेंगे।
ये थी लंदन से बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। बीते दिनों भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे, जहां उनके साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कदम कदम पर मौजूद रहे। मालदीव की यात्रा से भारत ने क्या हासिल करना चाहा और वो इसमें कितना सफल रहा, इसी बारे में सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट।
पिछले शनिवार जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की राजधानी माले के राष्ट्रपति भवन में प्रेस वार्ता करने पहुंचे, तो उनके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। मोदी के चेहरे पर एक ऐसे पड़ोसी के पास आने का सुकून दिख रहा था जो कई सालों तक पराया रहा। अपने पहले ही संबोधन में भारतीय पीएम ने चीन की तरफ एक साफ इशारा भी कर दिया।
राष्ट्रपति सोली, आपके पद ग्रहण करने के बाद से द्विपक्षीय सहयोग की गति और दिशा में मौलिक बदलाव आया। आज हमारा द्विपक्षीय सहयोग मालदीव में सामान्य जनजीवन के हर पहलू को छू रहा।
पीएम मोदी की यात्रा में न तो कोई बहुत बड़े आर्थिक या फौजी समझौते हुए और न ही उनके साथ भारत के नामचीन कॉर्पोरेट माले आए। दोनों देशों के बीच फेरी सेवाओं की शुरुआत और जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग जैसे समझौते जरूर हुए, लेकिन असल मुद्दा था दक्षिण एशिया में पैर पसारता चरमपंथ। मैं इस वक्त माले के रिपब्लिक स्क्वायर में मौजूद हूं और मेरी दाईं ओर यहां की मजलिस यानी संसद है और बाईं तरफ है राष्ट्रपति भवन, सामने हरा समंदर और ठीक पीछे एक खूबसूरत सी मस्जिद जहां पर अभी अभी अजान खत्म हुई है। मुद्दे की बात यह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में चरमपंथ की चिंताओं को रिकग्नाइज कर रहा है और चाह रहा है कि मालदीव भी इसकी गंभीरता को समझे। लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3-4 दिनों में हमारी लोगों से जो बात हो रही है और उनसे बात करने में जो सेंस मिलता है, लोग खुलकर कैमरा पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये है ज़रूर कि यहाँ के लोग अभी भारत और चीन दोनों को बतौर एक पार्टनर तौल रहे हैं कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। बात विकास की हो तो पिछले सालों में चीन से नज़दीकियों की झलक मालदीव में हर जगह दिखती है। करोड़ों डॉलर की लागत से समुद्र के ऊपर बना वो पुल जो राजधानी को देश के हवाई अड्डे से जोड़ता है, या फिर दर्जनों द्वीपों पर चीन के व्यवसायियों के होटल या रिजॉर्ट्स, रेस्तरां में चीनी खाने की न जाने कितनी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने यहाँ कंचन जशनानी जैसों की उम्मीदों को जगा दिया है। कंचन का परिवार 30 साल पहले भारत से मालदीव आकर बस चुका है।
इंडिया मालदीव का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और जो अभी नरेंद्र मोदी का यस्टरडे ही सेड लाइक नेबरहुड फर्स्ट, तो उससे तो वी एक्सपेक्ट मोर चेंजेस कि होपफुली आवर बिजनेस विल कम अप नाइसली।
मालदीव की आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं है। करीब $3 अरब का कर्ज तो चीन को ही चुकाना बाकी है, पर क्या भारत से पिछले साल $1 अरब से ज्यादा के सहयोग के वायदे से बात बन सकेगी? क्या मालदीव को भारत से ज्यादा की उम्मीद है? देश के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद इन दिनों संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने एक खास बातचीत में बीबीसी हिंदी को बताया,
आई एम श्योर The government is in conversation with.
मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जापान, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अरब लीग के देशों से भी बातचीत कर रही है। सऊदी अरब ने हमारे यहाँ हवाई अड्डे को बनाने के लिए काफ़ी मदद की है। हाँ, इंडिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सिर्फ इंडिया से ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कर्ज से निकाले।
लेकिन राजनीति से परे माले में मालदीव के कुछ मूल निवासी मोदी की इस यात्रा के बाद अपनी उम्मीदें बढ़ा चुके हैं। भारत की ओर से मालदीव में एक तरह से एक नई शुरुआत, नई पहल हुई है। मालदीव भी इस पर सहमत है। बिछड़े दोस्तों के दोबारा मिलने का इम्तिहान भी अब शुरू हो चुका है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी माले।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पिछले साल जनवरी में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में पठानकोट की अदालत ने कल 6 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें से 3 को उम्र कैद और बाकी 3 दोषियों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जम्मू में कई लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है, तो कई लोगों ने अदालत के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू से हमारे सहयोगी मोहित कंधारी की रिपोर्ट।
कठुआ गैंगरेप मामले में अदालत ने मुख्य अभियुक्त सांझी राम समेत 6 अभियुक्तों को तो दोषी माना है, लेकिन उनके बेटे विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया है। अभियुक्तों के समर्थन में रैली निकालने वाले जम्मू के हिंदूवादी संगठन अब क्राइम ब्रांच की जांच और अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एकजुट जम्मू के सदस्य अजाज जवान ने बीबीसी हिंदी से कहा,
जो जजमेंट आई है उसमें एक जज साहब ने विशाल जंगोत्रा को जो उसमें एक्विट किया है और उन्होंने कहा कि इसकी कोई भूमिका नहीं थी, तो ये एक हम जो बात कह रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच है ये इसमें बायस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लोगों की इम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसी बात को इस वर्डिक्ट ने जायज ठहराया है। जो उनकी मेन कहानी है कि सांझीराम ने विशाल जंगोत्रा को बुलाया और कहा कि इस लड़की को रेप करना है और वो वहां से मेरठ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आके उसने अपने पिताजी के साथ मिलके उस लड़की को गैंग रेप किया और उनको वापस फिर उसको दोबारा विशाल जंगोत्रा गया, तो वो सारी की सारी कहानी जो पुलिस की है वो तो ढह गई है। तो इस जजमेंट के साथ बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं कि जो जम्मू के लोग मांग कर रहे थे कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती जो है हमें जम्मू के लोगों को बदनाम करने के लिए, जम्मू के डोगरों को बदनाम करने के लिए एक साजिश कर रही है, वो इस वर्डिक्ट में साबित हुआ है।
वहीं हिंदू एकता मंच के भूतपूर्व सदस्य कांत कुमार ने कहा कि इंसाफ तो ना बच्ची को मिला और ना ही उन लोगों को जो इस केस में फंसे थे।
प्राइम एक्यूज बनाया गया विशाल जंगोत्रा को और हम शुरू से ही कहते थे कि ये पर्टिकुलर एक फैमिली को टारगेट करने के लिए, रसाना के लोगों को डराने के लिए, महबूबा मुफ्ती के इशारे पे ये एक थोपा जा रहा था क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो विशाल जंगोत्रा जब बाहर पड़ रहा था फिर भी उन्होंने उसको उसमें एक्यूज डाला।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील शेख शकील का मानना है कि आखिरकार बच्ची को इंसाफ मिल ही गया।
ये जो है इंसाफ उस मासूम बच्ची को मिला है और खास तौर पर ये उन लोगों को भी एक मैसेज गया है जिन लोगों ने हमारी रियासत में इसके ऊपर धर्म की राजनीति की और उसके बाद लोगों को डिवाइड करने की बात की। मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले से उनके चेहरे जो हैं वो लोग एक्सपोज हुए हैं।
वहीं मामले से जुड़े एक और वकील अंकुर शर्मा का कहना है कि ये फैसला मीडिया ट्रायल से प्रभावित है।
जिस तरीके से मीडिया ट्रायल और राजनीति इस केस के आसपास रही, मुझे लग रहा है कि उससे प्रेजुडिस जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई पूरे केस में। देखिए ये किस तरीके से हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसके कारण उसके पिता ने सारी साजिश रची, जब वो शख्स एक्विट हो गया, बरी हो गया, तो फिर वो जो कंस्पिरेसी का आधार क्या बचा कि कंस्पिरेसी रची और पिता को कन्विक्ट कर दिया जिसके लिए कंस्पिरेसी रची क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया था इस क्राइम में, उस पे साबित हुआ ही कुछ नहीं और वो तो ये कोर्ट ने ये कहा कि ये वहां पे था ही नहीं, वहां उस जगह पे था ही नहीं और क्राइम में इसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ये बड़ी ही एक बैफलिंग सी सिचुएशन है।
आने वाले दिनों में अभियुक्तों के परिवार पठानकोट अदालत के इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन फैसला आने के बाद इस मामले में लोगों की राय उतनी ही बटी हुई है जितनी मामला सामने आने के बाद थी। जम्मू से बीबीसी के लिए मोहित कंधारी।
और आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में ये खबर और अन्य खबरें किन सुर्खियों में छपी हैं। दिनेश उप्रेती कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, जैसा कि अभी हमने मोहित कंधारी की रिपोर्ट सुनी, कठुआ में बच्ची के साथ रेप मामले में उम्र कैद की सजा की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। जाने माने अभिनेता, लेखक, नाटककार, फिल्म डायरेक्टर और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड के निधन की खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 2011-12 से 2016-17 के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान तकरीबन 2.5% अधिक बताया गया। आधिकारिक तौर पर इस अवधि में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रही है, जबकि सुब्रमण्यम का कहना है कि ये इस आंकड़े से बहुत कम थी और 4.5% के आसपास थी। एयर इंडिया मामले में पूर्व नागरिक विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के सामने कल पेशी हुई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल कल 11 बजे दिल्ली स्थित ED दफ्तर पहुँचे और पूछताछ का दौर शाम तक चलता रहा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कल वकील नित्या रामकृष्णन के इस प्रतिवेदन को का संज्ञान लिया था कि गिरफ्तार किए गए पत्रकार की पत्नी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। युवराज सिंह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों में है। युवराज सिंह ने कल संन्यास की घोषणा लेते हुए कहा था, क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। युवराज ने भारत की तरफ से 40 टेस्ट और 304 वनडे मैच खेले। उन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
दिनेश उप्रेती बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या खास खास खबरें हैं। इधर उत्तर प्रदेश में BJP सांसद के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि धौरहरा की BJP सांसद रेखा वर्मा ने लखीमपुर खीरी जिले में मोहम्मदी थाने में तैनात एक सिपाही श्याम सिंह से उस वक्त अभद्रता की और थप्पड़ मार दिया उन्हें जब वो उनकी ड्यूटी में तैनात थे। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
लखीमपुर खीरी जिले में धौरहरा सीट से BJP की सांसद रेखा वर्मा लगातार दूसरी बार MP का चुनाव जीती हैं। रविवार रात उनकी इस जीत की खुशी में BJP के कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में मोहम्मदी थाने में तैनात कांस्टेबल श्याम सिंह भी सांसद की पुलिस सुरक्षा में लगे थे। श्याम सिंह का आरोप है कि सांसद ने वापसी के दौरान उनसे अभद्रता की और थप्पड़ मार दिया।
माननीय सांसद जी का दोबारा सांसद बनने पे चेयरमैन साहब के आवास पे उनका जो है स्वागत रखा गया था, जिसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई हुई थी। ड्यूटी समाप्ति के बाद हम लोग उनका एस्कॉर्ट करने के लिए उनके बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गए, तो हम गाड़ी मोड़ ही रहे थे तब तक माननीय सांसद जी वापस आ गई और सभी लोगों को उन्होंने बुलाया। हम गाड़ी पे तो उनके ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, उनको ड्राइवर को बुलाई है, मैं पास में गया, उन्होंने कहा कि जो है बहुत बड़े नेता बन गए हो, मैं चर्बी चढ़ गई है, इस तरीके से हम लोग जो है बेइज्जत करना शुरू किया। मैंने कारण पूछा, कोई भी कारण ना बता के सब अभद्रता की, मेरे साथ थप्पड़ मार दिया, वही अभद्रता हमारे साथ की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे।
सिपाही श्याम सिंह ने इस मामले की जानकारी उसी समय अधिकारियों को दे दी और थाने में तहरीर भी दी, लेकिन MP के खिलाफ FIR सोमवार शाम को ही दर्ज हो पाई। FIR लिखने में इतनी देर क्यों हुई, इस बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं सांसद रेखा वर्मा भी इन आरोपों पर फिलहाल कुछ भी बात करने से परहेज कर रही हैं। रेखा वर्मा इससे पहले भी कई बार विवादों में घिरी रही हैं। पिछले साल एक सरकारी बैठक में अपनी ही पार्टी के विधायक के ऊपर जूता उठाने और धमकी देने का वीडियो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। वहीं राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी पुलिस कर्मियों पर होने वाले हमले राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वाराणसी के पांडेपुर इलाके में कथित तौर पर अवैध बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचे एक इंस्पेक्टर पर कुछ लोगों ने इस कदर जानलेवा हमला किया कि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। वहीं प्रयागराज में दबिश डालने गई पुलिस टीम पर गांव के ही कुछ लोगों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला किया और बाद में फायरिंग भी की गई। गोरपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में एक दारोगा का सिर फट गया जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। घटना को हुए 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिसकर्मियों पर हमले की इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं की बढ़ोतरी से जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है वहीं सरकार का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को पुलिस के उच्चाधिकारियों के अलावा गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए 2 दिन पहले ही पुलिस और प्रशासन में राज्य भर में बड़े पैमाने पर तबादले भी हुए हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान महिला डांसरों को कथित तौर पर अश्लील डांस के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट में।
ईद के 2 दिन बाद यानी बीते शुक्रवार को लोहितपुरिया साप्ताहिक बाजार नामक एक संगठन ने कामरूप ग्रामीण जिले के आचलपाड़ा गांव में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया था। 6 गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला डांसरों को आमंत्रित किया गया था लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के महज आधे घंटे बाद आयोजकों और वहां मौजूद भीड़ में विवाद शुरू हो गया। दरअसल इस कार्यक्रम के आयोजकों पर आरोप है कि उन्होंने 100 और 50 रुपये के टिकट कथित तौर पर लोगों में ये कहकर बेचे थे कि बंगाल से महिला डांसरों के ग्रुप को डिस्को डांस करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन 7 जून की देर रात जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें डांस करने वाली सभी लड़कियां आसपास के इलाके से आई थी। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने महिला डांसरों को कथित तौर पर अश्लील डांस करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। अश्लील कमेंट्स पास किए तथा स्टेज पर नाच रही डांसरों की तरफ कागज और मिट्टी के टुकड़े फेंके जिससे हंगामा काफी बढ़ गया। घटना वाले दिन हंगामे के समय वहां मौजूद मिराजुल ने BBC से कहा,
11 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ था, मिनिमम 700 to 1000 ऑफ पीपल वहां गैदरिंग हुआ था। 2-4 इलीगल पर्सन यहाँ पे एंटी सोशियो कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे ये डिस्को धमाका कहते हैं उसको, पब्लिकों को ये बात बता दी थी कि कूचबिहार से और कलकत्ता से एक डिस्को डांस ग्रुप आएंगे।
इस मामले की जांच कर रहे 6 गांव थाना के प्रभारी रूपम हजारिका कहते हैं,
इंक्वायरी आने उससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते।
इस बीच महिला डांसरों के साथ छेड़खानी की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि जहां मुसलमान समाज में महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है उस समुदाय के लोग ईद के नाम पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं और प्रदेश में हुए विरोध के माहौल को देखते हुए ऑल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के सलाहकार अजीजुर रहमान ने कहा,
ईद के नाम पे इस्लाम में कोई ऐसा कल्चरल नाइट का कोई परमिशन नहीं है। इस इंसिडेंट में जितना लोग जड़ित है सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ना जरूरी है और उन लोगों को पूरा का पूरा पनिशमेंट देना चाहिए।
घटना की गंभीरता को समझते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल समेत वरिष्ठ मंत्री हिमंत विश्व शर्मा पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में है क्योंकि महिला डांस ग्रुप के साथ हुई इस घटना से 2 समुदाय के बीच डिवीजन का माहौल उत्पन्न हो गया है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और यहीं श्रोताओं को बताते चलें कि क्रिकेट विश्व कप में ब्रिस्टल में आज एक ही मुकाबला होगा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच और भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाली एक संसदीय समिति ने कहा है कि वह मुलर रिपोर्ट पर न्याय विभाग के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने माली में और अधिक हवाई सैन्य सहायता भेजने का फैसला किया है। अमरीका के एक वरिष्ठ राजनयिक तिबोर नागी कल सूडान जाएंगे। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।